अगली सूरत यासीन है, चंद आयतें इसकी। सूरत यासीन से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, अल्लाह हमें इस पे अमल वाला बना दे और मोहब्बत भी करने की तौफीक दे। किस हालात में हुई, कल के पारे के शुरू में करूंगी, अभी सिर्फ इन चंद आयतों का तर्जमा देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन कसम है कुरान हकीम की, तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है। आया क्यों है? लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि तुम खबरदार करो ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। ये नोट कर लें, गफलत के पर्दे पड़ते ही उस कौम पे जिनके पास कोई डराने वाला नहीं आता। इनमें से अक्सर लोग फैसला या अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दी है। किसके? तासुब के, जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े गए, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार इनके आगे खड़ी कर दी और एक इनके पीछे, हमने इन्हें ढांक दिया है, इन्हें अब कुछ नहीं सोचता। इनके लिए यकसां है, तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, ये न मानेंगे। तुम तो इसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे। इसको नोट कर लें, अरबे देखे खुदाए रहमान से डरे, इसे मगफरत और अजरे करीम की बिशारत दे दो। इंशाल्लाह रमजान के बाद हम सूरत यासीन की तफसीर करेंगे, तो आप देखिएगा कि अभी जो सिर्फ तर्जमे की आयतें हैं, इस एक एक आयत में से कितने अमल के नुक्ते मिलेंगे। अल्लाह ताला हमारे वक्त, सेहत और उम्र में बरकत दे। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो हम सब लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम जब्त कर रहे हैं। हर चीज को हमने खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इस आयत 12 पे आपको एक लेक्चर भेजा जाएगा घर में, व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ रही हूँ। आप इस एक आयत की तफसीर सुने, इसी पे ईसाले सवाब का भी एक लेक्चर है, अगर आप में से किसी के पास सीडी है। यही जो आज आपको इनकी रिवॉर्ड की वेबसाइट दिखाई थी, इसमें सीडीज के प्रोजेक्ट में मैंने वो सीडी देखी है, ईसाले सवाब, इसी एक आयत की तफसीर है कि हम अपने बुजुर्गों को कैसे ईसाले सवाब कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने लेक्चर किया है वो है, हम अपनी औलादों को किस तरह अपने लिए पीछे छोड़ें कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। यहां से एक वाक्या शुरू होता है जो अगले पारे में कंटिन्यू करेगा। वद्रिब लहुम, इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती का किस्सा सुनाओ जबकि इसमें रसूल आए थे, हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को चुटला दिया। ये नोट करें, न शुक्रे लोग, एक को चुटलाया चलो दूसरे को भी चुटला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा, हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए। अल्लाह हिदायत का सिलसिला मुनक़ते नहीं करता, ये अलग बात है कि लोग उसकी कदर ना करें। बस्ती वालों ने कहा, तुम कुछ नहीं मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब जानता है, हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। बस्ती वाले कहने लगे, हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बास ना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया, तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? यानी बुरा तो नसीहत करना ही लग रहा है। अब देखिए नबियों से कैसे मुमारी करते थे लोग, असल बात यह कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। जब करीब वालों ने ना माना, अल्लाह ने दूर वालों को बुला लिया, और कैसे? आखिरी आयत देखिएगा, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसा, इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी करो, पैरवी करो इन लोगों की जो तुमसे कोई अजर तक नहीं मांगते और ठीक रास्ते पर हैं। यहां एक बहुत बड़ी बात है, ये एक अल्लाह की सुन्नत ही रही, करीब वाले कदर नहीं करते ना कदरे होते हैं। जैसे मक्का वालों ने अल्लाह के नबी की वो कदर ना की जिसके वो मुस्तहिक थे, अल्लाह ने मदीना से वो 6 चमकती हुई शख्सियात को भेजा जिन्होंने पहली बैत की और फिर मदीना में रास्ते खुल गए। यहाँ भी ऐसे ही है, कहते हैं चिराग तले अंधेरा, ये बात किसी ने ऐसे नहीं बोली हुई। और दूसरी बात, यस आ, नेकियों के लिए दौड़ता हुआ आया। तो बस नेकियां दौड़ के करेंगे तो अच्छी होंगी, और अगर नेकियों से दौड़ेंगे तो जो की हैं वो भी जाया होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ना शुक्रेपन से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह पारा पूरा हुआ। सूरत फातिर की एक आयत में हमने देखा था, आज की शीट खोल लीजिए जरा सा, और एक दो चीजें रह गई, बाकी तो हमने पारे में कर ली। शीट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आयते तदब्बुर वही है जो भी हमने पढ़ी, सुम्मा उरसनल्लसीना। सूरत फातिर आयत 32 से 35 हमारी आज की आयात हैं। इसकी रोशनी में आपने मैंने गौर करना है कि मेरी क्या कैफियत है, जालिमुल्ली नफ्सी तो नहीं हूँ, मुक्तसिद हूँ या साबिकुम बिल खैरात। अगर जालिम दिखे तो मुक्तसिद बनने की कोशिश कीजिए, दरमियाने हैं तो साबिकुम बिल खैरात पे आइए, और अगर मुक्तसिद चल रहे हैं अभी, बीच बीच की रविश है, तो दौड़िए यसा, भागते हुए नेकियां कीजिए, अल्लाह आपका कदरदान है इंशाल्लाह। हदीस भी आज की हो गई, नेक्स्ट पे चलते हैं। आज की दुआ, नेमतों के जवाल की दुआ। आप देखिए कि शुक्र और नाशुक्री का ताल्लुक नेमतों के साथ है। दुआ मिलके पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाति निक्मतिका व जमी सखतिका। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आती हूँ नेमतों के जवाल से और आफियत के फिर जाने से। यानी आज नेमत है, चली ना जाए, आज आफियत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, चली ना जाए, व फुजाति निक्मतिका, और तेरी नाराजगी, यानी ऐसा ना हो कि मैं कहीं तेरी पकड़ का शिकार हो जाऊं, व जमी सखतिका, और तेरे इज्तमाई गुस्से का शिकार ना हो जाऊं, यानी बींग अ नेशन कहीं तेरा गुस्सा मेरे ऊपर ना आ जाए। तो आप देखिए कि ये दुआ बहुत ज्यादा आपके मेरे लिए अहम है। नेमत आते भी नहीं दिखती और जाते भी नहीं दिखती। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, जिक्र अस्कार की कसरत, जिसमें खास तौर पे दुरूद शरीफ। वक्त जाया करने वाले काम, मौजूदा नेमतों की कदर ना करना और गैर मौजूद की तमन्ना करना, इस पे जरूर गौर कीजिएगा। आप एक नेमत की कदर करें, कल अल्लाह आपको दूसरी भी देगा। आज इस नेमत की कदर छोड़ दें, कल दूसरी भी चली जाएगी, और आज हमारे काबिले तकलीद मिसालें अजवाज मुतहरात थी, अल्लाह हमें उनकी तरह साबिर और शाकिर बना दे। अब नेमतों के जवाल की बात, इस पे एक वीडियो आप सुन सकते हैं सिर्फ, किस तरह अल्लाह नेमत देता है और ले लेता है, आइए सुनते हैं।
स्टीफन हॉकिंग्स, दौरे हाजिर का आइंस्टाइन। स्टीफन हॉकिंग इस वक्त आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। उसे दुनिया का सबसे जहीन शख्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था, ये कायनात अभी नामुकम्मल है और दुनिया में रोजाना नए सैयारे जन्म ले रहे हैं। कुरान मजीद की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था। उसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोजाना नए सैयारे जन्म ले रहे हैं। उसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बाइस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। वो फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट है और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान उसे अपना गुरु समझते हैं, लेकिन ये उसकी जिंदगी का महज एक पहलू है। उसका असल कमाल उसकी बीमारी है। वो MSc तक एक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। उसे खेलने कूदने का शौक था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्तीरानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। वो 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था। वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसका तिब्बी मुआयना हुआ तो पता चला कि वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज में मुब्तला है। यह बीमारी तिब्बी जबान में ALC कहलाती है। इस बीमारी का दिल से ताल्लुक होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे अजलात होते हैं। ये अजलात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकिशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ALC का पहला मरीज सामने आया तो पता चला इंसानी जिंदगी का मरकज दिमाग नहीं बल्कि कल्प है। और दुनिया के तमाम मजहब ठीक कहते थे کہ انسان کو دماغ کے بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضا ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ اے ایل سی کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکن 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے بازو، پھر اس کا بالائی تھڑ، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی ٹانگیں، اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ 1965 میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ آج اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود ہے، یہ صرف پلکیں ہلا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے 1974 میں گڈ بائی کہہ دیا تھا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے، آگے پڑھنے اور اس معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا ہے۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا ہے۔ پلکیں ایک خاص زاویے اور ردھم میں ہلتی ہیں۔ یہ ردھم لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ لفظ کمپیوٹر کی اسکرین پر ٹائپ ہوتے ہیں اور بعد ازاں اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکن دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا ہے اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھیں۔ اس نے کوانٹم گریویٹی اور کائناتی سائنس کاسمولوجی کو بے شمار نئے فلسفے بھی دیے۔ اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا۔ اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے اور فرمز ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتی رہیں۔ ہاکنگ کی ویل چیئر کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کے سارے اعضا سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو قہقہا لگا سکتے ہیں اور جو اپنے تمام خیالات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟
اللہ اکبر، کیا سیکھا؟ پہلی بات ہے کہ اللہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ کبھی اپنی کسی نعمت پہ مان نہ کریں۔ ایک سیکنڈ کے، ایک کن کے ہم محتاج ہیں۔ لیکن جس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی گئی بات وہ کچھ اور ہے، وہ ابھی نہیں بتا آپ کو۔ ایک تو یہ کہ اس شخص نے یہ سوچ لیا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ مجبور کیوں نہیں ہوا؟ اس کے عذر تھے، اس کے لیے حالات سوٹیبل تھے سائنسدان بننے پہ۔ اس سے بھی بڑھ کے بات، اس کا سائنسدان بن کے دنیا کو یہ لاز دینا، یہ زیادہ اہم تھا کہ اس انسانیت تک یہ کتاب ہدایت پہنچانا۔ آج ہم مسلمانوں میں یہ کمٹمنٹ کیوں نہیں؟ اور آخری بات جس کو سن کر آپ دکھی ہوں گے کہ یہ تھیسٹ ہے، نہ شکر پن کی انتہا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ شکر پن سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔